नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित एक बहुत ही गहन चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है कर्मकांड की प्रेरणाओं में छिपा अध्यात्म। हमारे जो स्रोत हैं वो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि कर्मकांड का जो बाहरी रूप है और उसके अंदर जो एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है,
हाँ,
उनके बीच का वो जो नाजुक सा संबंध है,
हाँ,
उसे कैसे समझें।
हाँ,
तो इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि कर्मकांड का जो असली मर्म है,
बिल्कुल, जो उसका सार है,
हाँ, जो सार है, उसे उजागर किया जाए। इस अंतर को समझने के लिए पूज्य गुरुदेव एक बड़ा ही सटीक उदाहरण देते हैं।
हाँ,
शरीर और प्राण का।
हाँ,
वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर की क्या कीमत, मतलब शायद 10 रुपए की भी नहीं।
हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा चूना लोहा चर्बी,
वही,
हाँ,
थोड़ा चूना, एक कील जितना लोहा, 7 साबुन की टिकिया जितनी चर्बी, 3 बाल्टी पानी, माचिस लायक फास्फोरस,
बस,
पर उसमें जो चेतना है, जो प्राण है,
हाँ,
उसकी कीमत
वो तो अनमोल है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं लगा सकता।
बिल्कुल। तो यही बात कर्मकांड और अध्यात्म पर कैसे लागू होती है।
हाँ, ये सादृश्य एकदम सटीक बैठता है। पूज्य गुरुदेव कर्मकांड को बिल्कुल उसी शरीर की तरह, ये समझ लीजिए एक डिब्बी की तरह बताते हैं।
अच्छा, डिब्बी।
हाँ, जैसे कोई डिब्बी हो जिसमें कोई कीमती अंगूठी रखी हो। अब डिब्बी तो बाहर से सुंदर दिख सकती है, आकर्षक हो सकती है, पर असली कीमत किसकी है?
अंगूठी की।
हाँ, अंगूठी की। तो कर्मकांड वो बाहरी ढांचा है, वो कलेवर है, जैसे नारियल का वो जो सख्त खोल होता है ना।
हाँ हाँ खोपरा।
हाँ, खोपरा, वो रक्षा तो करता है पर मूल्यवान तो अंदर की गिरी ही है ना।
ये तो बहुत दिलचस्प रूपक है। तो अगर कर्मकांड बाहरी ढांचा है, वो खोल है, तो फिर अंदर का सार क्या है? वो असली चीज, वो गिरी, वो क्या है जिसे ये कर्मकांड सहजते हैं?
देखिए, वो असल चीज है अध्यात्म का प्राण।
अध्यात्म का प्राण।
हाँ,
हाँ,
जो हमारी चेतना से, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा और गहरे विश्वास से जुड़ा है। ये जो कर्मकांड है, पूजा पाठ, कथा, यज्ञ, ये सब, ये सब तो उस भीतरी प्राण को, उस आध्यात्मिक तत्व को सुरक्षित रखने के, उसे पोषित करने के और उसे अभिव्यक्त करने के साधन भर हैं।
साधन मात्र हैं।
हाँ, केवल साधन। इनका असली उद्देश्य तो व्यक्ति के विश्वास को, उसके चिंतन को, विचार और आस्थाओं को परिष्कृत करना है, उन्हें मांझना है।
अच्छा।
ताकि व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ बन सके, आदर्श बन सके, महान और उज्जवल बन सके।
तो मतलब लक्ष्य कर्मकांड करना नहीं है,
बिल्कुल,
बल्कि उसके जरिए अंदर बदलाव लाना है।
बिल्कुल।
लेकिन यहीं पर एक बहुत आम गलतफहमी भी तो होती है, जिसके बारे में पूज्य गुरुदेव हमें चेतावनी देते हैं ना।
हाँ, और ये बहुत बड़ी भूल है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई लोग ये मान बैठते हैं कि बस कुछ खास कर्मकांड कर लिए, कोई विशेष पाठ कर लिया या जप कर लिया,
वाह,
तो बस देवता प्रसन्न हो जाएंगे या कोई चमत्कारिक सिद्धि मिल जाएगी, चाहे उनका अपना जीवन, अपना आचरण कैसा भी क्यों ना हो।
हाँ, ये सोच तो काफी आम है।
बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव इसे कलम, कागज और स्याही के उदाहरण से समझाते हैं।
अच्छा, कैसे?
देखिए, परीक्षा पास करने के लिए ये चीजें जरूरी तो हैं, कलम भी चाहिए, कागज भी, स्याही भी, लेकिन क्या केवल सबसे महंगी कलम और सबसे बढ़िया कागज ले लेने से कोई पास हो जाता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान और समझ चाहिए।
वही, असल जरूरत तो ज्ञान और समझ की है। ठीक वैसे ही कर्मकांड, जैसे आचमन है, जल प्रक्षालन है, मंत्रोच्चारण है, ये जरूरी माध्यम तो है, पर उनके पीछे जो संकेत छिपे हैं, जो प्रेरणाएं हैं, जो जीवन के सिद्धांत हैं, अगर उनको समझा नहीं, उनको अपने जीवन में उतारा नहीं, तो फिर ये कर्मकांड लगभग निरर्थक है।
ये बात तो काफी सोचने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कर्मकांड करते रहना और अपने जीवन को, अपने स्वभाव को नहीं बदलना, ये तो एक तरह का आत्मधोखा हुआ।
बिल्कुल बिल्कुल, आत्मधोखा ही है।
हाँ, पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि ये मानना कि भाई जीवन तो सुधारा नहीं पर गंगा नहा लिए या सत्यनारायण की कथा सुन ली तो पाप धुल गए और स्वर्ग पक्का।
हाँ,
ये तो अध्यात्म का जो मूल सिद्धांत है, कर्मफल का सिद्धांत, उसी के साथ विश्वासघात है। उन्होंने इसे प्रच्छन्न नास्तिकता कहा है, मतलब छिपी हुई नास्तिकता।
सही कहा, ये बहुत गंभीर बात है। ये तो कर्मफल के सिद्धांत को ही नकारना हुआ एक तरह से।
हाँ,
और उन्होंने वो सेठ सेठानी और बैंगन वाली कहानी से इसे और भी साफ किया है।
अच्छा, वो कहानी क्या है?
कहानी कुछ यूं है कि एक सेठानी थी, वो तीर्थ यात्रा पर निकली, तो अपनी टोकरी में एक बैंगन भी साथ ले गई।
बैंगन, तीर्थ यात्रा पर।
हाँ, तो जहाँ भी गई, जिस पवित्र नदी में स्नान किया उस बैंगन को भी डुबकी लगवाई, जिस मंदिर में दर्शन किए देवता के सामने बैंगन को भी रखा।
अच्छा, फिर?
पर जब यात्रा खत्म हुई और घर आकर उस बैंगन को पकाने की कोशिश की तो क्या देखती है कि बैंगन तो अंदर से सड़ा हुआ ही निकला। मतलब वो बाहरी स्नान और दर्शन जो थे वो उसके अंदर की सड़न को मिटा नहीं पाए।
हाँ।
तो ठीक इसी तरह बिना अंदर बदलाव लाए, बिना स्वभाव को सुधारे, बाहरी कर्म कांड या तीर्थ यात्राएं व्यक्ति के मूल स्वभाव को बदल नहीं सकती।
सही बात है।
हमें समझना होगा कि पर्यटन अलग चीज है और सच्ची तीर्थ यात्रा का उद्देश्य अलग है। तीर्थ यात्रा मनोरंजन के लिए नहीं, आत्म सुधार के लिए होती है।
अच्छा, ये बैंगन वाली कहानी ने तो बात एकदम साफ कर दी। तो फिर निष्कर्ष ये नहीं है कि कर्मकांड बेकार हैं, बल्कि ये है कि उनका असली महत्व समझना होगा, उनका सही उपयोग जानना होगा।
निश्चित रूप से बात बिल्कुल वहीं आकर रुकती है। कर्मकांड निरर्थक नहीं है, बिल्कुल नहीं। पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि यज्ञ, संस्कार, ये सब जो कर्मकांड है, ये हमारे ऋषियों ने विकसित किए हैं। ये सूक्ष्म विज्ञान के प्रयोग है, ये सिर्फ दिखावा नहीं है।
सूक्ष्म विज्ञान ये क्या है?
हाँ, मतलब जब इन्हें सही समझ के साथ, सच्ची निष्ठा यानी श्रद्धा के साथ और पूरी जागरूकता के साथ किया जाता है तो ये व्यक्ति के अंतःकरण को,
अंतःकरण को मतलब हमारे मन बुद्धि चित्त को,
हाँ, हमारा जो भी भीतरी मानसिक तंत्र है उसको गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। ये हमारी सत प्रवृत्तियों को जगाने में मदद कर सकते हैं।
सत प्रवृत्तियां यानी अच्छी आदतें, नेक इरादे।
हाँ, सद्गुण, अच्छी आदतें, नेक इरादे, इनको जगाने में सहायक हो सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के अनुसार इनमें ध्वनि यानी मंत्र, भाव यानी श्रद्धा और संकल्प और तत्व जैसे यज्ञ में अग्नि,
अच्छा,
इन सब का सही संयोजन व्यक्ति पर और वातावरण पर भी सूक्ष्म प्रभाव डालता है। ये एक तरह की सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा भी पैदा करते हैं और ये ऊर्जा आंतरिक परिवर्तन में, मतलब गुण कर्म स्वभाव को बदलने में सहायक होती है। लेकिन जरूरी क्या है?
क्या
जरूरी? ये है कि कर्मकांड सच्ची श्रद्धा से किया जाए, उसके मर्म को, उसके पीछे जो संदेश है उसे समझ कर किया जाए, ना कि बस चिंग पूजा की तरह या सस्ते में पुण्य कमाने की भावना से।
सही कहा। तो मतलब भावना और समझ सबसे महत्वपूर्ण है।
हाँ, तो संक्षेप में अगर कहें, पूज्य गुरुदेव का संदेश बिल्कुल साफ है, कर्मकांड साधन है, साध्य नहीं है।
साधन है, साध्य नहीं।
हाँ, उनका असली मूल्य है उन प्रेरणाओं में, उन शिक्षाओं में जो वो देते हैं और उस मार्गदर्शन में जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए मिलता है। केवल बाहरी क्रियाएं कर लेना बिना अंदर की शुद्धि के, बिना सदाचार और नैतिक आचरण के, कोई वास्तविक आध्यात्मिक लाभ नहीं दे सकता।
बिल्कुल। तो अगर हम सोचे कि कर्मकांड एक नक्शा है जो हमें सही दिशा दिखाता है,
हाँ,
और आध्यात्म या वो जो आंतरिक परिवर्तन है वो असल यात्रा है, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात हो सकती है कि हम ये कैसे पक्का करें कि हम सिर्फ नक्शे को ही पकड़ें या निहारते हुए नहीं खड़े हैं, बल्कि उस नक्शे के सहारे सही दिशा में यात्रा भी कर रहे हैं। ये एक विचार है सोचने के लिए।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।